छोड़ गया तू। कम खाते हैं, कम सोते हैं, बहुत ज्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है चिट्ठी, आई है चिट्ठी, आई है वतन से चिट्ठी आई है। सुनी हो गई शहर की गलियां, कांटे बन गए बाग की कलियां, कहते हैं सावन के झूले भूल गया तू, हम नहीं भूले तेरे बिन जब आई दिवाली, दीप नहीं दिल जले है खाली तेरे बिन जब आई होली, पिचकारी से छूटी गोली, पीपल सूना पनघट सूना, घर शमशान का बना नमूना, फसल कटी आई बैसाखी तेरा ना रह गया बाकी। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है चिट्ठी, आई है चिट्ठी, आई है वतन से चिट्ठी आई है। पहले जब तू खत लिखता था, कागज में चेहरा दिखता था, बंद हुआ ये मेल भी अब तो खत्म हुआ ये खेल भी अब तो, बोली ने जब बैठी बहना रस्ता देख रहे थे नैना, मैं तो बाप हूँ मेरा क्या है, तेरी माँ का हाल बुरा है, तेरी बीवी करती है सेवा सूरत से लगती है बेवा, तूने पैसा कमाया इस पैसे ने देश छुड़ाया, देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा, देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा, आजा उम्र बहुत है छोटी, अपने घर में भी है रोटी। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है चिट्ठी, आई है बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को या वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है, आई है चिट्ठी, आई है।
यू आर लिस्निंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
अपने प्यारों को पैसे भेजें लैम्पफाई के जरिए, पैसे पहुंचे मिनटों में, वो भी आसान और महफूज तरीके से, गुड एक्सचेंज रेट के साथ। $150 भेजने पर $0 फीस। इसके अलावा अगर आप $100 से ज्यादा भेजें तो साइन अप करते वक्त रेफरल कोड E10 इस्तेमाल करें और अपनी पहली ट्रांजैक्शन पर 10% कैश बैक हासिल करें, यानी $500 भेजने पर $50 कैश बैक की सूरत में आपके अकाउंट में वापस। लैम्पफाई की 10% कैश बैक ऑफर के लिए आज ही लैम्पफाई की फ्री ऐप अपने फोन में डाउनलोड करें। विजिट lampfy.com फॉर टर्म्स एंड कंडीशंस।
फेडरल इलेक्शन सोमवार 28 अप्रैल नु हो रही है। यकीनी बनाओ कि तुसी वोट पाउन लई रजिस्टर्ड हो। जे तुसी रजिस्टर होए हो तां तुहानू डाक विच एक वोटर जानकारी कार्ड मिलना चाहिदा है। ए तुहानू दसदा है कि तुसी किथे अते कदों वोट पा सकदे हो। जे ए तुहानू 11 अप्रैल तक प्राप्त नहीं हुंदा है जां इस दे दित्ती जानकारी गलत है तां elections.ca ते जाओ। ए साडी वोट है। वोटिंग बारे लोड़ींदी अधिकारित जानकारी वास्ते elections.ca ते जाओ जां 1-800-463-6868 ते कॉल करो।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL, बिकॉज वी केयर।
अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा, वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा। सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747471।
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हर साल वांग इस वरे भी ओंटेरियो सिख गुरुद्वारा कौंसल वालों खालसे दा साजना दिवस डाउनटाउन टोरंटो विखे होवेगा, जो सवेरे 9 बजे CNE दे प्रोग्राम तो शुरू होके 1 बजे नगर कीर्तन सिटी हाल नु रवाना होवेगा। समुची साध संगत नु हुम हुमा के इस नगर कीर्तन विच शामिल होण दी निम्रता सहित बेनती कीती जांदी है।
ਇਸ ਸਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਗਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
मेरी पूरे साल की सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100।
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुर सिखाओ ना।
कोई बात सादा सी है, हमारे पास 2 गाड़ियां और 1 घर है, और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है। और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह, 647-290-3773।
ओ पाजी की होया,
मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, 15 साल बाद सब खत्म।
की किड्डा
मार्क कारनी है ते लिबरल्स, कार्बन टैक्स आसमान उछ हुंदिया, फ्यूल प्राइसेस, कंपनी साउथ वाल मूव कर रही हैं, ट्रकिंग दा बिजनेस खतरे च है।
इस चलाक बैंकर नेता कैनेडियन जॉब्स US भेज दितियां, ट्रंप दे सामने एक कमजोर है, हुन होर जॉब्स खत्म हो जाणगियां।
कॉमन सेंस कंजरवेटिव कार्बन टैक्स दा खात्मा करनगे ते नौकरियां लेके आउणगे।
कारनी ते भरोसा नहीं कीता जा सकदा, मैं तां पीएफ पॉली ऐप नूं ही वोट पाऊं।
दिस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय द कंजरवेटिव पार्टी ऑफ कैनेडा।
फेडरल इलेक्शन सोमवार 28 अप्रैल नु हो रही है। कि तुसी वोट पाउन दी योजना बना रहे हो, ए जानने लई कि किथे अते कदों वोट पा सकदे हो, अपने वोटर जानकारी कार्ड दी जांच करो। पोल 12 घंटे लई खुले हन। एक प्रमाणित आईडी लाउणा ना भुलो। जे तुसी वोट पाउन लई रजिस्टर नहीं हो तां तुसी अपने निर्धारित पोलिंग स्टेशन ते रजिस्टर कर सकदे हो। ए साडी वोट है। वोटिंग बारे लोड़ींदी अधिकारित जानकारी वास्ते elections.ca ते जाओ जां 1-800-463-6868 ते कॉल करो।
पील, दरहम, बैरी अते सू सेंट मरी पुलिस एसोसिएशन पीएर पॉली अते कंजरवेटिव का समर्थन कर रही हैं, क्योंकि यह तब्दीली का समय है। ओंटेरियो पारवेज पुलिस लिबरल कैच एंड रिलीज हफड़ा दफड़ी नु खत्म करने की मांग कर रही है। कंजरवेटिव सरकार रिपीट ऑफेंडर्स नु फड़ेगी, बॉर्डर्स नु सुरक्षित करेगी, नशे का इलाज करेगी अते साडी पुलिस का समर्थन करेगी। एडवांस पोल 18 to 21 अप्रैल तक है। असि चौथी लिबरल टर्म टॉलरेट नहीं कर सकते। सुरक्षित भाईचारे लई वोट पाओ, असल तब्दीली लई वोट पाओ, कंजरवेटिव नु वोट पाओ।
The Conservative Party of Canada.
Radio Sazora, music, news and information, messages and chit-chat.
वेलकम बैक तमाम सामीन जो हमें सुन रहे हैं 770 एम डायल पर प्रोग्राम साजो आवाज। मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और हमारे साथ गर्मा गर्म अब तक की ताजा खबरें जो कि सुबह से पानी डालकर ताजा किए कर लिए उन्होंने और अब सुनाने के बाद वो हो जाएंगी पासी। तो शाजिया मलिक साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद है, देखते हैं आज माहौल क्या रहा, किसका जो है वो पॉइंट्स वाइज यानी नैनो के जो आ रहे हैं आजकल सर्वे उसके मुताबिक आज कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। और ट्रंप साहब को मुझे लग रहा है कुछ दिन से कुछ खामोशी तो मुझे लग रही है या शायद मैं सुन नहीं रहा आजकल उनकी, या आप लोग डिसाइड कर रहे, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि पीछे का दरवाजा कहीं खुला हुआ है और उस पर बहुत सारी बातें जो हैं सारी दुनिया के साथ साथ चीना के साथ भी हो रही है। ये मेरा अपनी अजम्पशन है क्योंकि सामने खबरें तो आ नहीं रही, शाजिया जी बता सकती पर्दे के पीछे ही खबरें। तो आइए उनको प्रोग्राम में तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
हां WS अजीज हम उत्तम ठीक हो?
मेरे अजीज हम उत्तम,
मेरे अजीज ठीक हो? नदाम नदियों तुमने 10 मिनट गुजार दिए,
कोई बात नहीं आपने है? टाइम सारा
इतना तुमने टाइम वेस्ट कर दिया?
नहीं वेस्ट नहीं है, प्रोडक्टिव है।
अच्छा
इतना अच्छा मैंने जो है वो पंकज उदास साहब की गजल कह लें या गीत,
बहुत ही पुरानी फिल्म थी, नाम था इसका मूवी।
मैं तो नहीं देखी अब ना बोलिएगा मुझे देख लो, मैं नहीं मुगले आजम नहीं देखनी, ये भी नहीं देखनी,
बहुत जबरदस्त फिल्म थी, इसमें अमृता सिंह थी और जो है हमारे बाबू भैया जो बड़े आजकल कॉमेडी रोल्स करते हैं परेश रावल वो थे इसके अंदर, डॉन बने हुए थे बड़े खतरनाक, और थी अमृता सिंह थी इसके अंदर, नौतन थी। तो एक अच्छा बेटा होता है एक गंदा बेटा होता है, तो जो छोटा वाला जो था ना ये जो था संजय दत्त ये गंदा बेटा था, छोटा था, तो ये ड्रग्स में चला जाता है, फंस जाता है बेसिकली ये, और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और बहुत अफसोस की वैसे स्टोरी थी,
अफसोस की
तो ब्यूटीफुल, लेकिन ब्यूटीफुल जो उस जमाने में इंडियन फिल्म्स की स्टोरी राइटिंग होती थी ना वो तो अभी खत्म ही हो गई, अब तो स्टोरीज रही नहीं है ना, अब तो वो बस नंग पुरा नाच जो है बेहुदा किस्म के बस उसके ऊपर अब वो बेशरम रंग पे चल रहे हैं मूवीज, तो उस वक्त ज्यादा बेशरम रंग नहीं थे ना
सारी स्टोरी, तो अच्छी मूवीज भी आती
स्टोरी राइटिंग पे बहुत जोर,
हाँ वो टाइम स्टोरी राइटिंग 90s वाला टाइम था,
और फिर एक्टिंग भी थी ना उसमें, फिर वो एक्टिंग भी निकल के आती थी।
अब कमर्शलाइज ज्यादा हो गया, ग्लैमरस ज्यादा हो गई दुनिया,
ग्लैमर में तो फिर ग्लैमर में भी कपड़े बहुत उतार दिए गए हैं तो इसलिए वो अब देखे नहीं जा सकते ज्यादा, उस वक्त वो ये होता था कि हम सारे बैठ के फिल्म, यानी कि ये वैसी
फैमिली बैठ के देख लिया, सारे मिलकर रो भी रहे हैं, वो चिट्ठी आई है सारे रो रहे हैं,
ये सारी ये फिल्म फिल्में होती थी जो सब बैठ के देखते होते थे, तो सत्ते पे सत्ता जैसे इवन डॉन वगैरह वो जो अमिताभ बच्चन की और वो सारी और
सत्ते पे सत्ता शायद देखी होगी मुझे भी याद नहीं,
ऐसे कत्रिशूल तो ये सारे फिल्में जो होती थी ना ये फैमिली पूरी बैठ के देखती होती थी फिल्में, तो हाँ तो ये बहुत जबरदस्त फिल्म्स होती थी और बहुत, तो अब तो स्टोरी राइटिंग रही नहीं है इंडियन मूवीज में, बस वही है मार कुटाई गुंडागर्दी बदमाशी नाच गाने
आइटम सॉन्ग
और आइटम सॉन्ग
मूवी खत्म,
मूवी खत्म,
कोई सर पैर नहीं,
नहीं नहीं सर पैर,
साउथ फिर भी बेहतर मूवीज बना,
साउथ तो
उनका एक्शन मुझे ज्यादा पसंद आता है, डायरेक्शन है ना उनकी,
वो खुद ही कहते हैं कि हम लोग जो है ना सन्स ऑफ सॉयल है तो मिट्टी से जुड़े हुए हैं, तो वो मिट्टी की कहानी,
उनमें कोई हीरोइन ग्लैमरस भी नजर नहीं आएगी, अजीब कम कपड़े वाली नहीं नजर आएगी,
नहीं नहीं वो बिल्कुल अपनी जो,
और हीरो भी अजीब से मेल टाइप का होगा, थोड़ा सा पेड़ भी निकला होगा, बाल भी नहीं
निकला होगा। हाँ मोहनलाल की अभी देखें जो फिल्म आई है, देखो कैसी जबरदस्त,
चलो चलो साउथ चलो,
हाँ
नहीं अपने साउथ नहीं जाना, पकड़ लेंगे मैं बता रहा हूँ, अपने साउथ नहीं जाना
नहीं।
अभी ये जो साउथ नहीं नहीं तो कनाडा के भी जाओ, अपने साउथ में ना जाए, जो कंट्री है वो बहुत लैपटॉप सब कुछ चेक कर रहे हैं तो वहां भी कदम नहीं रखिएगा, साउथ ना जाए अभी ना जाए, फिर देखते 28 के बाद देखते हैं,
देखते हैं, चलिए
जी खबरें सुनाइए।
तो दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय राजा बादशाह जी, आप जाए उनके पास, ढेर सारी आपको बहुत अच्छी सुविधाएं देते हैं इस तरह की कि आपको होम और ऑटो इंश्योरेंस अगर चाहिए आमिर का नाम लें, बहुत ढेरों आपके पैसे बचेंगे, तो आप उनके पास जाएं, ऑल स्टेट के साथ काम करते हैं। अच्छा जनाब इसके अलावा अगर आपको अच्छा खाना खाना है तो आप विजय टेस्ट पे जाओ, फैसल चड्डा साहब होते हैं, उनके दो रेस्टोरेंट्स हैं, एक मिसिसागा में एक ओकविल में, बहुत जबरदस्त ऑथेंटिक आपको खाने वहां पे मिलते हैं, खाना खाने के बाद दांत आपके अगर खराब हो गए हड्डी जोर से दबा लिया आपने तो आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर नाजिया रहमान के पास, अभी नया जो उनका डेंटिस्ट्री ऑफिस है वो आ गया है रिजवे पे, उधर जाएं और आपको बहुत अच्छी वो सर्विसेज देते हैं। बल्क में अगर आपने सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स लेने हैं तो आप जा सकते हैं हमारे सुल्तान भाई के पास, 801 बुवे ड्राइव वेस्ट पे है और ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे है और आप उनसे बहुत अच्छे सर्विसेज ले सकते हैं। और असलम भाई के पास जाएं पायल ज्वेलर्स पे, इंडिया पाकिस्तान सिंगापुर से बहुत अच्छी ज्वेलरी लेकर आए हैं, तो आप उनसे अपना कोई भी ओकेजन है आप ज्वेलरी लीजिए, QTL अगर आप चाहते हैं आपका جو ٹرک ہے وہ بھاگتا پھرے, اچھی اس کی صحت رہے, ٹرک کی ہیلتھ اچھی رہے, تو آپ کوئک ٹرک لیوب کے پاس جائیں اور 15 منٹ میں آپ کا سارا کام کر دیتے ہیں. اور جناب یہ ٹیپ ٹیپ سینڈ, یہ جو ہے یہ نئی جو ہے وہ ایپ ہے, اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس میں پرومو کوڈ آپ کو یوز کرنا ہے Radio20 اور آپ کو ملے گا ایڈیشنل $20 آن یور فرسٹ سینڈ آف 200 اور مور. بیسیکلی یہ جو سروس ہے یہ پیسے آپ اس سے بہت ایزیلی بھیج سکتے ہیں, کہیں پہ بھی ہیں آپ, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا, افغانستان بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ. اچھا جناب, جیسے کہ اب جس دن سے الیکشنز اناؤنس ہوئے ہیں اس دن سے ہم آپ کو روز دو خبریں تو ضرور بتاتے ہیں الیکشن سے ریلیٹڈ جو کینیڈین ہے. ایک تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جی کس پوائنٹ پہ آپ کھڑے ہوئے, یعنی عامر جو کہتا ہے نا پائدان, تو اب کس پائدان پہ کون سی پارٹی کھڑی ہے, اور دوسرا یہ کہ لیڈرز نے آج کیا کیا پرومسز کیے ہیں نا. تو ہم اسی سے شروع کرتے ہیں. لبرلز پارٹی جو ہے وہ آج پھر سے نیچے آ گئی, کل اس کو 8 پوائنٹس کا ایڈوانٹیج تھا کنزرویٹوز پہ اور آج جو ہے وہ 6 پوائنٹس کا ہے آن ڈے 31 آف 36-day فیڈرل الیکشن. آپ کو بتائیے کہ اب بس 5 ڈیز ہی رہ گئے 28 کو ہے. اور نینوس کے یہ جو پولز آئے ہیں اس کے مطابق جو آج لبرل ہے وہ 43% سپورٹ پہ ہے, کل ذرا زیادہ تھی. کنزرویٹو پارٹی 37%, NDP 10, بلاک کیوبیک واز 6, گرینز 3, یہ دونوں اسی نمبر پہ ہیں. ایون پیپلز پارٹی آف کینیڈا 1%, یہ بھی اسی نمبر پہ ہے. لبرل سپورٹ جو ہے وہ اسٹرانگ ہے آنٹیریو, اٹلانٹک, کینیڈا, کیوبیک کے اندر. ہم آپ کو کچھ دن سے BC کا بھی بتا رہے تھے, ابھی یہ 3 میں رہ گئے ہیں. کنزرویٹو اسٹرانگسٹ ہے پریریز میں. آنٹیریو لبرلز جو ہے, آنٹیریو میں جو لبرلز ہے 13 پوائنٹس کا ان کو ایڈوانٹیج ہے, 49% سپورٹ ان کے پاس ہے. کنزرویٹو کے پاس 36%, NDP کے پاس 11%, یہ تھوڑا سا اوپر گئے ہیں. کیوبیک کے پاس, کیوبیک میں ان کے پاس لبرلز کے پاس 39% سپورٹ ہے, کنزرویٹوز کے پاس 24, بلاک کے پاس 26. کنزرویٹوز میں, پریریز میں کنزرویٹوز اوپر ہے, 57% سپورٹ ہے, لبرلز کا 31%, NDP 10%. BC میں جو ابھی تک جو لبرلز آگے چل رہے تھے ابھی ڈیڈ ہیٹ میں داخل ہو گئے ہیں, کیونکہ لبرلز اور کنزرویٹوز دونوں ٹائڈ ہے اب 40% پہ. لبرلز لیڈ کر رہے ہیں اٹلانٹک میں, 53% سپورٹ ہے, کنزرویٹوز کے پاس 31%, NDP کے پاس 49%. ویمن ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہم لبرلز کو ووٹ کریں گے, 29% کنزرویٹوز, 12% NDP. البتہ 36% مین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ووٹ کریں گے لبرلز کو, اور 46% کنزرویٹوز کو, 9% NDP کو. کنزرویٹوز جو ہے ان کے پاس ایڈوانٹیج ہے فار ووٹرز انڈر 35, 40% ان کو سپورٹ کرتے ہیں, لبرلز کو 34%, NDP 15%. جو کنزرویٹوز کے پاس 40% سپورٹ ہے ان پیپل ایج 35 and 54 ایز ویل. لبرلز کے پاس یہاں پہ تھوڑی سی سپورٹ کم ہے, 39% پہ ہے, NDP 10%. 52% آف ایج 55 and above جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم بیک کریں گے لبرلز کو, 32% کنزرویٹو, 7% NDP, اور پریفرڈ PM جو ہیں ابھی بھی کارنی ہیں, ان کے پاس 47% سپورٹ ہے, اور اب ان کو 13 پوائنٹ کا ایڈوانٹیج آ گیا ہے اگینسٹ PA پالیاف جن کے پاس 35% سپورٹ ہے, سنگھ صاحب کے پاس 6% سپورٹ ہے. تو آج کی سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ تینوں جو پارٹیز تھے جیسے کہ لبرلز اور جو NDP اور جو بلاک کی بیکوا گرین, سب نے ہی اپنے پلیٹ فارمز جو تھے وہ جو تھے انویل کر دیے تھے, صرف کنزرویٹو پارٹی نے نہیں کیا تھا. اور کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا جو ہیں کارنی صاحب کے, یہ ہائیڈ کرے. آج جناب کنزرویٹو پارٹی نے اپنا فلی کاسٹ جو پلیٹ فارم ہے وہ رول آؤٹ کیا ہے, اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ 142 بلین کے ڈیفیسٹس آئیں گے 4 ایئرز میں. حالانکہ کل ابھی یہ اعتراض کر رہے تھے کارنی صاحب کے اوپر کہ یہ بہت زیادہ ڈیفیسٹ ہے اور یہ کیسے چلے گا اور یہ وہ. بہرحال جی وہ اب ان کا جو ہے 142 بلین کا تقریباً رہے گا. تو وہ کہتے ہیں جی کہ اس میں ہم سٹیپس لیں گے کہ 15% انکم ٹیکس کو کٹ کیا جائے فار کینیڈینز جو کہ ارن کرتے ہیں 57,000 پر ایئر. یہ اس پلیٹ فارم میں انہوں نے کہا جی کہ ہم ایڈ کر رہے ہیں پروجیکٹڈ ریونیو گین فرام اسکریپنگ پروگرامز لائک کلین الیکٹریسٹی ریگولیشنز, کاربن ٹیکس آن انڈسٹری اینڈ ریزیڈینٹس, یہ گارنٹیڈ ریونیوز اس سے آئیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ ہم کٹ کریں گے لبرل ڈیفیسٹ بائی 70% بائی کٹنگ آن بیوروکریسی, کنسلٹنٹس, فارن ایڈ ٹو ڈکٹیٹرز اینڈ ٹیررسٹ. اب یہ ان کو لگتا ہے کہ لبرل پارٹی ڈکٹیٹرز کو, ٹیررسٹ کو ایڈ دیتی ہے. بہرحال یہ تو UNRWA کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے. اینی ویز اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ ہم سلیش کریں گے اسپیشل انٹرسٹ کے لیے اور انلیش کریں گے تقریباً $0.5 trillion of extra economic growth by unlocking power of resources इन होम बिल्डिंग प्लेटफॉर्म जो है उसका नाम इन्होंने दिया है चेंज। पीए पालियार साहब ने इसको कहा जी कि ये चेंज है, और पीए पालियार साहब ने आज कहा जी कि इनकम टैक्स प्रॉमिस जो है हम आपको दे रहे हैं ये सेव करेगा एवरेज वर्कर को $900, एवरेज वर्किंग फैमिली जो है $1800 इसकी वजह से बचाएगी। पीए पालियार साहब ने कहा कि ये अलाउ करेगा कैनेडियंस को टू कॉन्ट्रीब्यूट एक्स्ट्रा 5000 पर ईयर टू टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट अगर वो इन्वेस्ट करेंगे कैनेडियन कंपनीज के अंदर। आज इन्होंने प्लेज किया कि बिलियंस जो है हम डिफेंस पे स्पेंड करेंगे एंड बिल्ड करेंगे 3 मिलिट्री बेसिस इन आर्टिक और न्यू एयरक्राफ्ट फॉर सर्वेलेंस। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि हम जो नेटो का ये टारगेट है कि 2% ऑफ जीडीपी आप अपना डिफेंस पे स्पेंड करें ये भी हम मीट करेंगे। इस वक्त कनाडा जो है वो 1.37% करता है विच एक्चुअली इज $41 बिलियन एनुअली जो कि इतनी भी छोटी रकम नहीं है। इसके अलावा इन्होंने आज फिर से रिपीट किया पीए पालियार साहब ने कि हम 2.3 मिलियन न्यू होम्स बनाएंगे। दिस इज ऑन टॉप ऑफ द अर्लियर प्रॉमिस टू एक्स जीएसटी फ्रॉम परचेज ऑफ न्यू होम्स अंडर $1.3 मिलियन। और इन्होंने कहा जी कि अगर इनकी गवर्नमेंट बनी तो ये पे करेंगे ड्रग ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स के लिए फॉर 50,000 पीपल और कट करेंगे यूज ऑफ कंसल्टेंट्स और ये इनको बचाएगा $10 बिलियन। इसके अलावा ये रिड्यूस करेंगे फॉरेन एड बजट पे। हाँ जाहिर है कि फॉरेन एड बजट ही बहुत ज्यादा है, तकरीबन $12 बिलियन जो है कनाडा स्पेंड करता है पर ईयर ऑन फॉरेन एड डिफरेंट कंट्री को, जैसे पाकिस्तान को दिया, हेटी को दिया, जहां कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, सूडान में आया, पैलेस्टाइन है और जगहों पे, तो ये तकरीबन जो ह्यूमैनिटेरियन एड एंड की ये स्पेंड, तो कहते हैं जी हम कट कर लेंगे, तो ठीक है स्ट्रेट अवे 12 बिलियन जो है बच जाएगा। तो भाई यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, वाह वाह क्या बात है। तो जो कनाडा का ह्यूमैनिटेरियन यानी कि जो फेस है उसको बेसिकली ये कट करेंगे। तो ये जनाब हुआ जो उन्होंने दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आई कि इसके अंदर वाओ क्या चीज थी, कुछ मुझे वाओ नहीं इसके अंदर नजर आया। अगर आपको कुछ नजर आया हो तो आप मुझे जरूर बताएं। अच्छा जनाब, अगर आपने 2024 का इनकम टैक्स फाइल किया है तो आज आपको जो है वो आ जाएगा फाइनल कार्बन रिबेट पेमेंट जो है वो आज आ जाएगा आपको, और ये बिल्कुल फाइनल पेमेंट्स होंगे ये कार्बन टैक्स के जो अब आपको दिए जा रहे थे सीआरए के पास। अगर आपने उनको ये कहा है कि डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दे तो वो डायरेक्टली उधर चला जाएगा, वरना दूसरों को चेक्स के थ्रू ये चेक्स आएंगे। ये सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट किया था न्यूफाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, पीईआई, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रांसविक, ऑन्टेरियो, मैनिटोबा, सस्कैचुआन, अल्बर्टा, नुनावट और यूकॉन। तो ये तमाम भी जो प्रोविंसेस और टेरिटोरीज हैं इनको, इनके रहने वालों को मिलेगा, लेकिन जाहिर है कि अमाउंट जो है वो वेरी करेगा। जो अल्बर्टा में एक इंडिविजुअल है, दिस इज नॉट द फैमिली ऑफ फोर, फैमिली ऑफ फोर को तो इससे भी ज्यादा पैसे आएंगे, लेकिन एक इंडिविजुअल का हम आपको बता देते हैं, अगर वो अल्बर्टा में है तो $228 का उसको चेक आएगा या उसके डायरेक्ट उसके बैंक में जाएंगे पैसे। सस्कैचुआन में इंडिविजुअल को $206, मैनिटोबा में $150, ऑन्टेरियो में $151, न्यू ब्रांसविक $165, नोवा स्कोशिया $110, पीईआई $110, न्यूफाउंडलैंड एंड लेब्राडोर $145। क्रिटिक्स ने कहा जी कि जिस वक्त मार्क कार्नी ने अनाउंस किया था कि हम कार्बन टैक्स को एक्स कर रहे हैं उसी वक्त ये पेमेंट्स रोक देने चाहिए थे, क्योंकि अब ये थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स जो हैं फिर से लोगों के पास चले जाएंगे। तो विच इज वेरी राइट जो क्रिटिक्स बोल रहे हैं। बहरहाल जी अब ये जो है लोगों के पास और पैसे आज उनको भेज दिए गए हैं तो उनको मिलेंगे। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जो है उन्होंने कहा जी कि उनकी अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है री ऑर्गेनाइज करेगी स्टेट डिपार्टमेंट को, ताकि जो रिडंडेंट ऑफिस है और जो बहुत सारे प्रोग्राम्स है जो कि अलाइन नहीं करते हैं यूएस के साथ, उन सबको कट किया जाएगा। उन्होंने कहा जी कि ये जो अप्रोच है ये एम्पावर करेगी स्टेट डिपार्टमेंट को, और इसमें बहुत सारे जो ब्यूरोज हैं एम्बसीज में वो अंडर ट्रंप साहब का जो अमेरिका फर्स्ट एजेंडा है उनको भी हम खत्म करेंगे। उन्होंने कहा जी कि कुछ रीजन स्पेसिफिक फंक्शंस जो हैं उनको कंसोलिडेट किया जाएगा, और वो कहते हैं जी कि जो अमेरिका है वो बेतहाशा करता रहा है, स्पेंडिंग करता रहा है, तो जो चीजें नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है वो बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए। वो कहते हैं जी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो काम होता था अंडर सेक्रेटरी फॉर सिविलियन सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी, उसको अब एक डिपार्टमेंट के नीचे लाया बनाया जाएगा विच इज कोऑर्डिनेटर फॉर फॉरन असिस्टेंस एंड ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स. उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया स्टेट डिपार्टमेंट का जो इतना बेतहाशा फैलाव इन्होंने कर दिया है ओवर ईयर्स में. वो कहते हैं जी ये ब्लोटेड है, ब्यूरोक्रेटिक है और बिल्कुल इसके अंदर नॉन परफॉर्मिंग ब्यूरोक्रेटिक और डिप्लोमेटिक मिशन है जो कि आजकल के जमाने के साथ पेस नहीं रख रहे हैं. अब इन्होंने ये नहीं बताया कि शायद बहुत सारे कंट्रीज में ये कोई काउंसलेट्स भी शटडाउन करना चाहते हैं कि नहीं, तो ये अब आने वाले दिनों में पता चलेगा. लेकिन इसके साथ साथ आज जो एक अच्छी खबर ट्रंप साहब की तरफ से आई है वो ये है कि कुछ दिनों से आ रही थी, आपको पता ही है कि फेडरल रिजर्व के जो चीफ हैं उनको वो निकालना चाहते थे. आज उन्होंने कहा जी नहीं, मैं पावेल साहब को नहीं निकाल रहा. यूएस एकेडेमिक्स जो है वो बहुत ज्यादा खिलाफ हो गए हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने तो आज सू कर दिया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को. हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस और जो स्कॉलरली सोसाइटीज है वो मोर्चे वहां पे अब निकाल रहे हैं अमरीका में और उन्होंने एक अपना ज्वाइंट स्टेटमेंट उनके प्रेसिडेंट्स ने दिया है जिसमें कि कहा गया है कि ये जो ट्रीटमेंट ट्रंप की गवर्नमेंट कर रही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ वो बिल्कुल ठीक नहीं है. और ये लोग इसलिए बहुत ज्यादा भड़क गए क्योंकि हार्वर्ड ने कहा कि व्हाइट हाउस हमारी इंडिपेंडेंस को थ्रेटन कर रहा है और जो है ये बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है और ये जो इंटरफेरेंस है ये बहुत ही डेंजरस है हायर एजुकेशन के अंदर. ये कोर्सिव इसके जो पॉलिसीज है ट्रंप गवर्नमेंट के ये बिल्कुल ठीक नहीं है. तो आज जिन प्रेसिडेंट्स ने साइन किया उसमें बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के प्रेसिडेंट्स हैं, प्रिंसटन, ब्राउन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई, कनेक्टिकट स्टेट कम्युनिटी कॉलेज, इन सब ने और भी बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ने इसमें किया. उन्होंने कहा जी कि ये हम बिल्कुल अपोज करते हैं कि ये जो कर रहे है इनका, हम ये अपोज नहीं करते हैं कि गवर्नमेंट का लेजिटिमेट राइट है कि वो ओवरसाइट कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम्स का लेकिन उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते इन द लाइव्स ऑफ पीपल हु लर्न लिव एंड वर्क ऑन द कैंपसेस. और आपको पता ही है थोड़े दिन पहले मैंने आपको ये खबर सुनाई थी कि जब ट्रंप साहब ने कहा था कि हम आपका 2.3 बिलियन यूएस डॉलर का जो फंड है वो बिल्कुल हम आपका खत्म कर रहे हैं क्योंकि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे. तो उन्होंने आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने जो सू किया उन्होंने कहा जी कि हमें कहा गया था कि हमारा बॉडी फैकल्टी करिकुलम जो है उसके अंदर जो लिबरल हमारा जो स्टैंस है उसको ये खत्म करना चाहते थे और हमने इनको ना बोला था. ये जो सूट है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का उसके अंदर इन्होंने कहा जी कि ये जो हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ये वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन फॉर स्पीच और ये हम होने नहीं देंगे. बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट्स हैं अब वो अब सपोर्ट कर रहे हैं हार्वर्ड के प्रेसिडेंट एलन गॉर्बर को क्योंकि उन्होंने बिल्कुल जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का बाव डाउन करने का जो उनका एक तरीका था कि ये कर जाए उसको बिल्कुल रिजेक्ट किया था. इससे पहले आपको पता है बहुत बड़ी जो एक यूनिवर्सिटी थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी उन्होंने कहा था कि जी बिल्कुल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो कहेगी हम करेंगे तो वो स्टैंड नहीं ले सके थे क्योंकि उनको भी कहा था कि तुम्हारा फंडिंग हम सारा काट देंगे. हार्वर्ड ने फिर स्टैंड लिया, उन्होंने कहा कि हम अपना बिल्कुल जो इंडिपेंडेंट स्टैंड है उसको बिल्कुल हम उसके सामने बाव नहीं करेंगे, आपको हमारा फंडिंग खत्म करना है तो आप कर सकते हैं. बहरहाल आज उन्होंने सू किया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को. ट्रंप साहब जो है उन्होंने कहा है जी कि मैंने नेतन्याहू साहब से बात किए है और हमने बहुत सारे मामलों के ऊपर बात किया है जैसे कि ट्रेड एंड इंक्लूडिंग ईरान. अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा जी मैंने उनको कॉल दिया था विच वेंट वेरी वेल. यूएस और ईरान जो है आपको पता ही है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ईरान का उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं. ट्रंप साहब ने आज रिपोर्टर्स को बुलाया कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत अच्छे मीटिंग्स जो हैं वो ईरानियंस के साथ चल रहे हैं और जो ईरान है उसने लेकिन कहा था कि ये जो इसराइल है ये चीजों को खराब करने की कोशिश कर रहा है और यूएस के ऊपर प्रेशराइज कर रहा है और अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहा है टॉक्स को. न्यूयॉर्क टाइम्स की भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कि ये कहा गया था कि ट्रंप साहब अभी तक डिसवेड कर रहे हैं इसराइल को कि वो अटैक ना करे इरानियन न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर और वो कहता है जी कि डिप्लोमेसी को एक चांस दो. नेतन्याहू ने कहा था कि वो ठीक है आप बातचीत करें लेकिन हम बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे ईरान को टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स. और वेस्ट और इसराइल जो है वो वैसे अक्सर ही ईरान को एक्यूज करते हैं कि शायद वो न्यूक्लियर अपना जो वेपन्स है वो डेवलप कर रहे हैं. ईरान ने हमेशा इन चार्जेस को डिनाई किया है और उन्होंने कहा जी कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ सिविलियन पर्पस के लिए है और मतलब है तुसी सारी दुनिया नू तबाह करो, लोगों नू मारो, काटो, जो मर्जी आप करें, आपको कोई ना पूछे लेकिन आप इजाजत नहीं देंगे दूसरे को न्यूक्लियर वेपन्स रखने के लिए. वाह क्या बात है जनाब, क्या बात है. मतलब वही गल हुई ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तो आप अब फिर वैसी दुनिया को चलाने की कोशिश कर रहे हैं. अच्छा जनाब आपको पता ही है कि जेडी वैंस साहब जो थे अमेरिका में थे, आपको हम सॉरी इंडिया में थे, जो कि हमने आपको कल सारी डिटेल्स बताए थे कि उनके बच्चों ने बड़े मजे किए मोदी जी के साथ, उनके घर के लॉन में फिरते रहे और उन्होंने इनको मोर के पर वर दिए. तो ये आज जो है एक वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था जयपुर में, क्योंकि अब ये चले गए हैं मोदी जी से मिलने के बाद, तो वहां पे लोगों ने इनसे पूछा कि भई आपने तो, आपके कंट्री ने हमारे कंट्री पे बहुत सारा टैरिफ लगा दिया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो वो कहते हैं जी कि नहीं, हमारे दोनों के कंट्रीज के बीच में बहुत सारा सेमनेस और फ्लैटनेस है, और रीबैलेंस जो है उसको ग्लोबल ट्रेड को करने के लिए ये ट्रंप साहब का टैरिफ एक्शन लगाया है, लेकिन इससे जो है इंडिया को बहुत सारा बेनिफिट आने वाला है। उन्होंने कहा जी कि जो इंडिया है वो अभी जाहिर है कि अपने आप को जो कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है एज अ मैन्युफैक्चरिंग बेस ऑफ चॉइस फॉर वर्ल्ड, तो उसके अंदर जो चाइना है वो अब बहुत सारे यूएस हाई टैरिफ्स जो है वो फेस करेगा। उन्होंने आज स्टूडेंट्स, ट्रेडर्स और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियंस को बताया जयपुर के अंदर कि हम दोनों सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, और 21st सेंचुरी के अंदर अगर प्रॉस्पैरिटी और पीस चाहिए तो इंडिया और यूएस को मिलकर काम करना पड़ेगा, और अगर हमने मिलकर काम न किया तो फिर ये बहुत ही डार्क टाइम रहेगा ह्यूमैनिटी के लिए। इंडिया जो है वो बिल्कुल एक नेचुरल पार्टनर है, लेकिन ये भी हम चाहते हैं कि इंडिया हमसे ज्यादा जो है वो डिफेंस इक्विपमेंट ले, यानी कि उनका कहने का मतलब ये था कि आप भाई जो रशिया से ले रहे हैं आप वो ना ले। हमने आपको ये पूरी रिपोर्ट बताई थी कि जिस वक्त मोदी जी अमेरिका गए भी थे, उस वक्त भी जब ट्रंप साहब ने बहुत जोर दिया था और ट्रंप साहब ने कहा था कि हाँ शायद हम आपके कुछ लेंगे, लेकिन एक्सपर्ट्स जो इंडिया के अंदर है, जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स, वो अब इस चीज पे खुश नहीं है, इसलिए क्योंकि जो पूरे का पूरा इनका जो सिस्टम, इंडियन सिस्टम, वो रशियन कंप्लायंट है, क्योंकि हमेशा से ये रशिया से लेते आए हैं, तो इसलिए जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, तो इसलिए जो उन्होंने सिस्टम्स अब सेटअप किए हैं वो रशियन कंप्लायंट है। वैसे भी वो जो रशिया के जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो सस्ता है अमरीका से, तो अमरीका का जो इक्विपमेंट है बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन अब वो कहते हैं कि जी आप हमसे जो है ये लें, क्योंकि वैसे भी वो कहते हैं जी कि दोनों कंट्रीज के मिलिट्रीज जो है रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज के अंदर अच्छा रहेगा अगर आप हमारा इक्विपमेंट यूज करें, लेकिन पूरे सिस्टम को चेंज करना एकदम से जरा उनके लिए मुश्किल होगा। अच्छा जनाब, इसराइल जो है वो तो आपको पता ही है ना कि वो तो बड़ी सती सावित्री खातून बनी हुई है इसराइल, तो वो तो कहता है जी मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, सारी दुनिया खराब है, मेरे आसपास लोग खराब है। अब ये जो है ये देखो ना, अल्लाह की लाठी बोलते हैं ना, बे आवाज है, ये बे आवाज लाठी जो है अब इसराइल के ऊपर पड़ी है। इसराइल ने तकरीबन 15 मेडिक्स जो है जिनको के मार दिया था लास्ट मंथ इन गाजा, तो इसकी मिलिट्री फोर्सेस ने, तो अब इसके ऊपर लोगों ने कहा था कि भई आप एक प्रोफेशनल, आप एक इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन बिठाएं, जिसपे इन्होंने कहा जी कि ये प्रोफेशनल फेलियर है। पहले तो ये मानने को तैयार ही नहीं था इसराइल के, हमने कोई भी मेडिक्स मारे हैं, इसके अंदर रेड क्रॉस के और रेड क्रिसेंट के बहुत सारे लोग थे, एक यूनाइटेड नेशंस का बंदा था और इन्होंने मारा था। अब ये पकड़े कैसे गए, ये पकड़े ऐसे गए कि ये इन्होंने जी ये एम्बुलेंसेज बहुत सारे जा रहे थे इनके, ये जो एड एजेंसीज है और जो हेल्प करते हैं लोगों के वहां पे गाजा में, तो इनके ऊपर इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग जो है वो इसराइल के सोल्जर्स ने शुरू कर दी और उसके अंदर ये सारे मर गए। और फिर इन्होंने क्या किया कि उनके जो एम्बुलेंसेज थे उनका बिल्कुल कचूमर बना के और उन लोगों को भी जमीन में दफना दिया, और उनके जो व्हीकल्स थे उनको भी ऐसे साइड वाइड पे फेंक दिया कि पता ना चल सके कि इनके व्हीकल्स किधर है। लेकिन जब 15 लोग गायब हो गए, तो जब इनके जो दूसरे साथी थे इनको ढूंढने के लिए आए, जब वो, उनको पता तो था कि इनका रूट क्या, जब वो ढूंढ रहे थे इनको, तो कोई एक जो मोबाइल फोन था वो बज रहा था बार बार, शायद कोई कॉल कर रहा होगा अपने किसी दोस्त को, या वो बार बार बज रहा था। तो जब उन्होंने ऐसे आसपास के एरिया को देखा, डिगिंग की, तो देखा कि जी लाशें ही लाशें बैरी की हुई हैं और वो फोन उनका मिल गया। अच्छा, उस पे पहले तो इसराइल ने झूठ बोला, ओ जी वो जो था यहां पे जो हमारा जो कमांडर था उसको तो जी पहले बत्तियां ही नहीं नजर आ रही थी, हालांकि आपको पता है कि ये रेड क्रॉस वाले कोई भी एम्बुलेंसेज गुजरते हैं उनकी बत्तियां जल रही होती हैं, और ये बड़े बड़े यूनाइटेड नेशंस और बड़ा बड़ा रेड क्रॉस जो है उनकी वैन्स पे लिखा होता है। तो जिन्होंने ये जनाब ये बिठाई ये जो है इन्वेस्टिगेशन, तो उन्होंने कहा जी कि पहले तो इनको ये इनकी चूंकि बत्तियां नहीं चल रही थी तो इसलिए पता नहीं चला इजरायली फोर्सेस को, तो उन्होंने गोलियां इनके ऊपर चला दी, उनको लगा कि ये हमास के मिलिटेंट्स हैं। अच्छा, अब जब वो फोन मिला तो उस फोन में वो लड़का शायद रिकॉर्ड कर रहा था, वो फोन साफ दिखा रहा है कि उन जो व्हीकल्स हैं उनके बत्तियां भी जल रहे थे, और वो कह रहा है उनको बार बार बाहर निकल के ये लोग कह रहे हैं कि ये हम जो है हमारा वी गॉट नथिंग टू डू विद मिलिटेंट्स, यू नो हम तो एक एड वर्कर्स है, तो उनको गोलियां मार के जो है ये मार, तुम सारे का सारा उस मोबाइल फोन के अंदर जो है वो कैप्चर हो गया और इसके अंदर 8 रेड क्रेसेंट के, 6 सिविल डिफेंस के, 1 यूनाइटेड नेशंस का बंदा था जिनको मारा गया तल अल सुल्तान इन रफा के एरिया में। तो आज अच्छा अब ये सारी चीज सामने आ भी गई है तो जरा बेशर्मी का आप आलम देखें कि उस पे भी वो जब उन्होंने पूछा यूनाइटेड नेशंस ने कि तुमने क्यों मेडिक्स को मारा और क्यों इनको बरी कर दिया और इनके जो व्हीकल्स थे उनको भी कचूमर उनका बना के फेंक दिया साइड पे, कहते हैं हाँ हाँ असल में ये तो लाशें जो हैं ये तो सड़क पे पड़ी रहती हैं तो कुत्ते इनको खाते रहते हैं तो हम नहीं चाहते थे कि इनकी लाशों का ऐसा जो है वो खराब हाल होए तो इसलिए हमने इनको बरी किया। आज तक तो आपने लाखों बंदा गजा में मार दिया, कितने लोगों को आप बरी कर रहे हो भाई है? वैसे तो आपने किया है बहुत सारों को बैरी भी लेकिन अभी अदरवाइज आप किधर करते हो। मेजर जनरल योव हैर जो हैं बहरहाल उनको, ये इजरायली जो जनरल हैं इनको दिया गया था ये सारा इन्वेस्टिगेशन, इन्होंने बिठाया, उन्होंने कहा जी हमें इस चीज का बहुत अफसोस है। हाँ जी अब तो एक्सपोज हो गए आप तो आपको अफसोस रहेगा भी। लेकिन आज भी इजरायली फोर्सेज ने शाम के वक्त जो है ये जो अल मवासी का टेंट था जिसमें के टेंट में लोग रह रहे थे उसके ऊपर जो है बम्बार्डमेंट करके 10 बंदे मारे और सिंस डॉन जो है अभी तक आज के दिन 28 और पैलेस्टीनियंस को ये मार चुके हैं। बहरहाल जी बहुत इनको जो है वो इनकी बेइज्जती हुई है, कैसे इन्होंने बॉडीज को बुलडोज किया है, व्हीकल्स को और इनको मैस ग्रेव में सबको बैरी किया है। तो ये सारी की सारी फुटेज जो है ये सामने आ गई और इनका पोल खुल गया। इटली और सऊदी अरेबिया जो है जी वो अब स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन जो है अपना और बढ़ाएंगे इन बिजनेस कल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और एक फॉर्म करेंगे सऊदी इटालियन बिजनेस काउंसिल इन मिलान जिसके के अंदर शेयर जो इनके एम्बिशंस हैं उनके बारे में बात की जाएगी। उन्होंने कहा जी कि हम लिंक करेंगे, इसके अलावा एक आईएमईसी कॉरिडोर बनाएंगे जो कि लिंक करेगा यूरोप को, गल्फ को और इंडिया को। और उन्होंने कहा जी कि अब हम बहुत सारे मीटिंग्स जो हैं ऑर्गेनाइज करेंगे टू स्ट्रेंथन बायोलैटरल टाइज, क्योंकि ये सारी की सारी चीज ना सिर्फ इटली के लिए बल्कि अलाइन करती है सऊदी अरेबिया का विजन 2030 गोल्स जो है। इटली का जो एम्बिशन है वो ये है कि ये ग्लोबल इंडस्ट्रियल फुटप्रिंट अपनी जो चीजों का वो बढ़ाए। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो है अर्लियर दिस ईयर उनकी मुलाकातें जो है इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जी मेलोनी के साथ एउला के अंदर हुई थी और बहुत सारे इन्होंने जो है वो एमओयू साइन किए थे विच वॉज वर्थ $10 बिलियन। सऊदीज ने कहा था कि हम इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो ये कह रहे हैं कि हम बहुत इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, स्पोर्ट्स, डिफेंस, एंटरटेनमेंट और टूरिज्म जो है उसको बढ़ाएंगे। तो जनाब ये जो है वो मेजर खबर है। बांग्लादेश जो है उनकी उसके लिए भी आज बहुत ही ये दिल दुखाने वाली खबर आई है। उन जो अभी रन तो कर रहे हैं इंटरिम लीडर इनके मोहम्मद यूनुस और उन्होंने कहा है कि हम रिफॉर्म्स भी लेकर आएंगे क्योंकि यहां पे हम वो कहते हैं जी डेमोक्रेसी हमको चाहिए है क्योंकि एक आपको पता ही है कि स्टूडेंट्स का एक अपराइजिंग आया था और उसके अंदर जो है हसीना की गवर्नमेंट को निकाला था। उससे भी रिलेटेड आज बहुत सारे शॉकिंग न्यूज जो हैं वो सामने आए हैं कि हसीना की रजीम ने बांग्लादेश में लोगों के साथ कैसा ट्रीटमेंट किया और जो डायसेंटिंग वॉइसेज होते थे उनके साथ ये कैसा बिहेव करते थे। तो उन्होंने कहा जी आज जो सारी रिपोर्ट सामने आई हैं तो उन्होंने उसमें उन्होंने कहा है जी कि ये तकरीबन जो है इनके जो जितने भी पॉलिटिकल अपोनेंट्स होते थे और सैकड़ों लोग जो होते थे उनको गायब कर दिया जाता था बाय हर सीनियर ऑफिशियल्स और सिक्योरिटी फोर्सेस का यूज करते हुए। एक जो है बहुत सारे तो हाउस ऑफ मिरर्स में चले जाते थे। यह हाउस ऑफ मिरर्स जो है एक सीक्रेट आर्मी डिटेंशन सेंटर है ढाका में, इट इज वन ऑफ हंड्रेड ऑफ सस्पेक्टेड अंडरग्राउंड जेल्स जहां पे जो है ये जो भी इनके खिलाफ बात करता था उसको रखा जाता था, बहुत सारों को मार दिया जाता था और वो कहते हैं जी कि उनकी बॉडीज को दरिया में फेंक के उनके ऊपर सीमेंट के बोरियां रख दिए जाते थे ताकि ये फिर से बॉडीज जो हैं ये पानी के ऊपर रीसर्फेस ना करें। ये बांग्लादेश के अंदर जब यूनुस साहब आए तो उनको कहा गया कि आप ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाए। वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट जो है उसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर में गवर्नमेंट को दी थी जिसके कि अभी डिटेल्स अब सामने आने शुरू हुए हैं। इसमें इस रिपोर्ट ने बोला कि हसीना और उसके सीनियर ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने ये सारे एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस जो लोगों के होते थे जो उनके खिलाफ बोलते थे ऑर्केस्ट्रेट किया था। बांग्लादेश की जो इंटरनेशनल कोर्ट ट्रिब्यूनल है उसने फिर इशू किया था अरेस्ट वारंट फॉर अलेज्ड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट समर लास्ट समर अगेंस्ट हसीना और उसका रोल जो था इन फोर्स डिसअपीयरेंसेस और उसके जो साथी थे. यूनाइटेड नेशंस ने भी एक्यूज किया था हसीना और उसके सिक्योरिटी और इंटेल ऑपरेटर्स को कि वो बहुत ही सीरियस और सिस्टमैटिक राइट्स वायलेशंस कर रहे हैं. यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन के जो ह्यूमन राइट्स के जो चीफ हैं वॉल्कर टर्क, उन्होंने भी कहा कि तकरीबन 1400 प्रोटेस्टर्स को गोली मार के मर दिया गया था जब ये स्टूडेंट सड़कों के ऊपर आए थे हसीना की गवर्नमेंट के खिलाफ. मेजोरिटी ऑफ द पीपल वर शॉट बाय पुलिस एंड द सिक्योरिटी फोर्सेज. उन्होंने कहा जी कि ये जो है दिस अमाउंट्स टू क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्योंकि आपके नॉलेज में होते हुए कोऑर्डिनेटेड तरीके से और आपके डायरेक्शन के ऊपर जो है इन प्रोटेस्टर्स को मारा गया था. और जिस वक्त आप पावर में रहना चाहते थे, हसीना जो इस वक्त आपको पता ही है एग्जाइल के अंदर है इंडिया में, वो ये सब चार्जेस जो है उसको डिनाई करती है.
चलिए जनाब, हम एक ब्रेक ले लेते हैं. न्यूज का पहला सेगमेंट आपने समाप्त फरमाया, देख भी लिया और सुन भी लिया. एक स्पॉन्सर्स के पैगाम लेते हैं, वापस आते हैं. ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज का पार्ट टू के लिए. 416-620-1778 हमारा नंबर है.
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो.
घर तक पैसे भेजना कभी आसान नहीं रहा है, आपके हाथों से इंडिया में बैठे आपके अपनों तक सिर्फ कुछ टैक्स के साथ. जी हाँ, जब आपकी फैमिली को हो आपकी सबसे ज्यादा जरूरत, तब टैक्स एब्सेंस देता है आपको ग्रेट कम्पेटिटिव एक्सचेंज रेट्स. ना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स की चिंता, ना कोई हिडन फीस का डर, जस्ट हमारा इजी टू यूज ऐप और पैसे सीधा घर. डाउनलोड आवर ऐप एंड यूज प्रोमो कोड रेडियो 20 टू गेट एन एडिशनल $20 ऑन योर फर्स्ट सेंड ऑफ $200 और मोर. टैप ऐप एंड सेंड.
फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, या फिर हो पे लोन. सोचो ना बस, बिल्कुल भी मुड़े मिलाओ फोन. 416-502-8000. स्ट्रेस चाहे लाख ना हो या उस जिंदगी मुश्किल कर देता है. बाकी बातें एक तरफ, आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस का हल है शिराज शफीक, जिनके पास है मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्राइवेट फंड्स. लास्ट मिनट क्लोजिंग हो या डिफिकल्टीज, सभी के लिए शिराज शफीक. 416-502-8000. लाइसेंस नंबर 10845. इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड.
कौन कहता है कि इंश्योरेंस कंपनियां वक्त पर क्लेम अदा नहीं करती? एक और मिसकंसेप्शन कि लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी या फिर ट्रेवल इंश्योरेंस बहुत महंगी हैं. नहीं साहब, आप एक बार इंश्योर प्रो के फजल वदूद से बात कीजिएगा. 28 years ऑफ अंडर राइटिंग एक्सपीरियंस एंड 2 years इन द फील्ड. लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी, ट्रेवल इंश्योरेंस, हर इंश्योरेंस के मामले के लिए फजल वदूद ऑफ इंश्योर प्रो. 905-607-5000.
501 Bowie Drive, West Brampton, या कॉल करो 905-450-2828. 905-450-2828.
हाँ जी, तो आज लाहौर में जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है ATC, उसने नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स दिए हैं केपी के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर और दूसरे 3 PTI के जो लीडर्स हैं, क्योंकि उन्होंने कहा जी बहुत ही वायलेंट प्रोटेस्ट इन्होंने किया था अक्टूबर 5 को इन इस्लामाबाद. ATC जो है उसने अरेस्ट वारंट्स डाले हैं हम्माद अजहर, सईद सिंधु, शहबाज अहमद के लिए भी, क्योंकि वो कह रहे हैं जी कि इनको बहुत दफा कहा है कि इन्वेस्टिगेशन को आप ज्वाइन करें और इनको पुलिस ने समन्स भी भेजे हैं लेकिन ये आ नहीं रहे हैं. पुलिस ने जी कि ये वांटेड इन केसेस के अंदर, और उन्होंने कहा कि PTI के वर्कर्स जो है इन्होंने अटैक किया था लॉ एनफोर्समेंट के पीपल को और इनको नॉमिनेट किया था बहुत सारे FIRs में और इनको समन्स भेजे लेकिन ये नहीं आए. प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है जी अब तुर्की में पहुंच गए हैं फॉर 2 day विजिट. इनको इन्वाइट किया था टर्किश प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगान ने. तुर्की के जो डिफेंस मिनिस्टर है याशर गुलर, उन्होंने आज इनको रिसीव किया था एयरपोर्ट के ऊपर. अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, हाई लेवल डेलीगेशन जो है वो بائیلیٹرل ٹائز پہ بات کرنے کے لیے پرائم منسٹر کے ساتھ گیا. اس کے اندر ہیں اسحاق ڈار، عطا اللہ تارر اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر، طارق فتمی، شہباز شریف صاحب اور جو اردوغان صاحب ہیں وہ بہت سارے معاملوں کے اوپر بات کریں گے. پتہ نہیں ابھی تک باتیں ان کی کیا رہ گئی ہیں، 70 ایئرز سے باتیں کر رہے ہیں. بہرحال وہ کہتے ہیں جی ہمارے بہت لانگ اسٹینڈنگ ٹائز ہے اور اسٹریٹجک پارٹنرشپس ہے، تو ہم جو ہے اس کے اوپر ایکسپشنل بانڈز بنائیں گے اور بردرہڈ جو ہے اس کو آگے لے کے جائیں گے. ان کے جو میٹنگ ہے وہ ایک کنٹینویشن ہے آف یہ جو ڈائلاگ ان کے بیچ میں ہوا تھا اس سے پہلے جب اردوغان صاحب آئے تھے پاکستان فیبرری میں، اور انہوں نے کو چیئر کیا تھا 7th سیشن آف ہائی لیول اسٹریٹجک کوآپریشن کاؤنسل. ریاض ثناء اللہ صاحب، جیسے کہ ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ سندھ کے سینئر جو منسٹر ہے شرجیل میمن کے ساتھ بات انہوں نے کہا تھا میں کروں گا، تو آج ان کی بات چیت ہوئی ہے اور آج انہوں نے کہا ہے کہ بہت سارے چیزوں کے اوپر ہم اگری کر گئے ہیں ٹو ریزالو دا کینال پروجیکٹ ایشو. اور اس سے پہلے ایک دن بھی جو پی ایم ایل این کے سپریمو ہیں نواز شریف صاحب، انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو کہا تھا کہ امیڈیٹلی ڈائلاگ جو ہے انیشیٹ کریں پی 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 کے گورنمنٹ کے لیے کے ساتھ اور یہ ڈسپیوٹس جو ہے ختم کریں. مگر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ قصہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے اور اس کے اوپر رضامندی شو کی تھی، جیسے کہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ پی 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 نے پہلے رضامندی شو کی تھی اور جس وقت ڈفرنٹ پارٹیز جو ہے وہ سندھ میں اٹھنے لگے انکلوڈنگ پی ٹی آئی، انہوں نے جب اس کے اوپر مسئلہ اٹھایا تو تب پی 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 نے کہا کہ اوکھو ہن تے کم خراب ہے، ہن تے سانو بھی اٹھنا پے گا. تو اب جو ہے پی 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 کہہ رہی ہے میں نہ مانوں، ہے جی، تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ سینسٹیو نیشنل ایشو ہے اور اس کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے کہا جی کہ ہم نے اب جو ہے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہائی لیول نیگوشیٹنگ ٹیم ہم بنائیں گے وتھ ڈیپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار ٹو ایڈریس پی 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 اور جو بھی دوسرے پولیٹیکل پارٹیز ہیں سندھ کے، ان کے جو کنسرنز ہیں. شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے پھر ملاقاتیں جب یہ ترکیے سے واپس آئیں گے تو زرداری اور بی بی زرداری کے ساتھ بھی ہوئے گے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم کو ایک ایمیکیبل سولوشن چاہیے. اس کے علاوہ واٹر ریسورس منسٹر جو ہے معین وٹو، اس نے بھی آج اوکارا کے اندر وہ تھے، انہوں نے آج میڈیا کو بتایا کہ یہ جو بھی کچھ ایمبیگوٹیز ہے اور واٹر ڈسٹریبیوشن کے پرابلمز ہے ان سب کو ایمیکیبلی ہم کریں گے انڈر انڈس ریور سسٹم اتھارٹی، ارسا کا جو لا ہے اس کے انڈر. سندھ کے جو چیف منسٹر ہیں مراد علی شاہ، انہوں نے آج ڈیمونسٹریٹرز کو کہا ہے کہ آپ بالکل پیسفل رہے اور آپ ہارڈ شپس جو کمیوٹرز ہیں اور جنرل پبلک ہے ان کے خلاف آپ نہ کریٹ کریں. ایز اے پریس کانفرنس کر رہے تھے کراچی کے اندر لائرز، اور انہوں نے کہا جی آپ لائرز اور نیشنلسٹ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، بالکل میں آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ پروٹیسٹ کریں لیکن اپنے ہی لوگوں کے لیے مصیبت نہ بنیں. پی 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 اور جو پروٹیسٹرز ہیں ان کا سیم ہی گول ہے اور پی 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 جو ہے وہ بھی سٹیج کرے گا اپنا پروٹیسٹ اگر یہ جو ہمارے ٹاکس ہے کینال کے ایشو کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ نہ صحیح آگے چلے. فیبرری میں اس سال چیف آف آرمی سٹاف جنرل آصف منیر اور پنجاب کی جو چیف منسٹر ہے مریم نواز، انہوں نے لانچ کیا تھا ایک گرین پاکستان انیشیٹو ان چولستان، جس میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایگریکلچر کو ریولیوشنائز کرے گے اور فارمرز جو ہے اس کو فیسلٹیز دیں گے انڈر ون روف. کراچی جو ہے اس میں اب بے تحاشا اس کے بعد پروٹیسٹ آگے تھے، پروٹیسٹرز جو ہیں انہوں نے پروٹیسٹرز کو اب جوائن کیا ہے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر نے بھی، وہ بھی آج کل آپ کو پتا ہے بہت بڑے لیڈر بن کے اب آج کل سامنے آ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ لائرز جو ہے انہوں نے اپنا سٹ ان کیا ہے اور نیشنل ہائی وے ان خیرپور ڈسٹرکٹ میں، اور انہوں نے جو ہے انڈیفینٹ بوائیکاٹ آف کورٹس بھی اناؤنس کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج اسٹوڈنٹس نے بھی بہت بڑی تعداد میں ان کو جوائن کیا ہے. اوور 100,000 افغانز جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کے ان دا لاسٹ 3 ویکس جا چکے ہیں اکارڈنگ ٹو انٹیریئر منسٹری. فیڈرل گورنمنٹ نے لانچ کیا تھا یہ میس ایویکویشن کیمپین آن April 1st، کیونکہ گورنمنٹ نے کہا تھا کہ جی طالبان گورنمنٹ کو ہم کانسٹنٹلی بول رہے ہیں کہ آپ کے لوگ جو ہے ہمارے ملک میں ٹیررزم کر رہے ہیں اور آپ نہیں اس کو ہٹا رہے ہیں. تو اس لیے اب ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ شاید اب اسلام آباد میکسیمم پریشر ڈالنا چاہتا ہے تاکہ یہ جو کراس بارڈر اٹیکس اور دوسرے ہو رہے ہیں وہ نہ ہوئے. کانوائز آف افغان فیملیز جو ہے وہ اب جو ہے جانا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ اب تو 30th اپریل جو ہے وہ ڈیڈ لائن ہے اس کے ایکسپائر ہونے سے پہلے. لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑے دکھی ہیں، کچھ افغان وہ کہتے ہیں جی ہم تو پیدا ہی پاکستان میں ہوئے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں افغانستان کس طرح کا ملک ہے، وی آر ناٹ ایون اویئر آف دیٹ کنٹری، اور ہم کو ڈر ہے کہ وہاں پہ ہم کو پولیس مارے گی، پیٹے گی، ہیومیلیٹ کرے گی، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو مار بھی دیا جائے. البتہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس کوئی اب چارہ نہیں ہے کہ ہم بالکل ہیلپ لیس ہے اور ہم کو واپس جانا پڑے گا. افغان پرائم منسٹر حسن اخند جو ہیں انہوں نے یہ یونیلیٹرل میجر جو پاکستان کی طرف سے لیا گیا ہے کہ جس میں کہ لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے اس پہ وہ بڑے غصے ہیں. بھائی کی عجیب بات ہے, آپ کے بندے ہیں, اپنے بندے سنبھالو آپ یار. ان کو ریفیوجیز کے طور پہ یہ آئے تھے تو ابھی اس وقت یہ جو ہے مالک ادھر بنے ہوئے ہیں. واٹ از دس؟ بہرحال جی, اگر آرام سے رہتے تو ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں تھی, مگر آپ دیکھو نا ہمارے ملک میں بھی کیا کر رہے ہیں. نہیں, ناٹ ایوری افغان, آئی ایم ناٹ سیئنگ ایوری افغان, بٹ فیو آف کورس. تو اب اس میں اس لیے زیادہ ہیٹ آ گئی ہے کیونکہ ہم نے آپ کو کل ہی بتایا تھا کہ فارن منسٹر جو ہیں اور ڈیپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب وہ اب کابل جائیں گے. تو اب وہ کابل پہنچے ہوئے ہیں فار ڈے لانگ ڈسکشنز کہ یہ جو کچھ بھی کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہا ہے اس کے اوپر. تو اس لیے جو حسن آخند ہے انہوں نے پاکستان کے گورنمنٹ کو کہا ہے کہ ذرا ڈگنیفائڈ طریقے سے ان کو افغان ریفیوجیز کو بھیجو. تو ہم کیا کر رہے ہیں بھائی, ہم کوئی دھکے تھوڑی مار رہے ہیں, ہم نے تو ان کو نوٹس دیا کہ بھائی جاؤ. تو اب وہ اپنے ملک جا رہے ہیں. ٹی ایم سی کے جو ایم پی ہیں شتروگھن سنہا, انہوں نے آج ڈیفینڈ کیا ہے ویسٹ بنگال کی چیف منسٹر ممتا بینرجی کو آن مرشد آباد وائلنس, اور انہوں نے بالکل ان کا ساتھ دیا. انہوں نے کہا کہ بالکل وقف ایکٹ جو ہے اس نے بہت سارے پرابلمز کریٹ کیے ہیں اور اس کو پش کیا جا رہا ہے ود پرٹیکولر ایجنڈا. انہوں نے کہا جی کہ وقف ایکٹ کے اندر جو امینڈمنٹس لائے ہیں وہ کلیئرلی پولیٹیکل موٹیوز کے لیے لائے گئے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ مرشد آباد کا جو وائلنس ہے وہ ایک ویل پلانڈ کانسپریسی تھی, اور انہوں نے بلیم کیا ٹو ایلیمنٹس ان بی جے پی کہ یہ کمیونل ٹینشنز جو ہے کریٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ بڑا سیڈ ہے, یہ بہت پین فل ہے, لیکن اس کو ڈیلیبریٹلی پین فل بنایا جا رہا ہے. بی جے پی جو ہے کانسٹنٹلی کوشش کر رہی ہے ہندو اور مسلم فیملیز کے بیچ میں ڈیوائڈ لانے کا. اٹ از سیڈ اینڈ اٹ از شیم فل, شتروگھن سنہا نے کہا. اس کے علاوہ جب ان کو پوچھا گیا کہ راہل گاندھی جی جب بھی باہر جاتے ہیں تو انڈیا کے خلاف بات کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا جی کہ ہاں یہ باتیں صرف باہر نہیں ہوتی ہیں, یہ ملک کے اندر بھی ہوتی ہے, تو اس کے لیے اتنا ڈسکمفرٹ آپ ساروں کو کیوں فیل ہو رہا ہے. جو ٹروتھ جو ہے وہ تو سامنے آتا ہی ہے, ستے میوے جیتے, جو ان کے وہ آپ کو پتا ہی ہے نا کہ ان کے وہ اس کے اوپر جو جھنڈا ہے اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے, یعنی کہ سچ کا بول بالا. تو وہ کہتے ہیں جی سب سامنے آ ہی جاتا ہے, اور انہوں نے جو کچھ بھی بولا ہے یا جو بولتے ہیں وہ کچھ نیو نہیں ہے, یہ ڈومیسٹکلی بھی لوگ بولتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے بہت زیادہ تعریف کی ممتا بینرجی کی. انہوں نے کہا جی کہ ہماری دیدی جو ہے ون آف دا اسٹرانگیسٹ لیڈرز ہے انڈیا کے اندر, اور بالکل ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. آج افسوس کا واقعہ جو انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ہوا, وہاں پہ 24 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی جب گن مین جو ہے انہوں نے اوپن کیا فائر آن اے گروپ آف ٹورسٹ, اور اس کو جو ہے بہت ہی ورس اٹیک بولا جا رہا ہے آن سویلینز ان ایئرز. کسی بھی گروپ نے ابھی تک اس کا کچھ ریسپانسبلٹی نہیں لیا ہے, حالانکہ کہا گیا ہے کہ شاید کوئی ایک آف شوٹ ہے ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی, شاید اس نے کیا ہے, لیکن کل ہم آپ کو ڈیٹیلز بتائیں گے جب بالکل کانفرمیشن آئے گی. بی جے پی کے رویندر رائنا جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کاورڈلی ٹیررسٹ جو ہے انہوں نے انوسینٹ ٹورسٹ کو کشمیر کے اندر جو وزٹ کر رہے تھے ان کو ٹارگیٹ کیا ہے. کچھ جو ہیں لوگ ان کو ہاسپٹل میں بھی ایڈمٹ کیا گیا ہے. 3.5 ملین ٹورسٹ جو تھے وہ کشمیر میں 2024 میں آئے تھے اکارڈنگ ٹو دا آفیشیل فگرز. 2023 میں انڈیا نے ہوسٹ کیا تھا G20 ٹوریزم میٹ ان شری نگر انڈر ٹائٹ سیکورٹی, دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ نارملسی اینڈ پیس ہیز ریٹرن ٹو ویلی, اور یہ فائٹنگ وغیرہ سب ختم ہو گئی تھی سنس 2019 جب مودی گورنمنٹ نے اس ٹیریٹری کو انڈر ڈائریکٹ کنٹرول آف نیو ڈلہی لے آئے تھے اور اس کا جو اٹانومس جو اسٹیٹس تھا اس کو ختم کر دیا تھا آرٹیکل 370. جیسے کہ آپ کو پتا ہے 500,000 سولجرز جو ہے وہ پرماننٹلی یہاں پہ ویلی کے اندر ڈپلوائے کیے گئے ہیں. مودی جی جو کہ سعودی عربیہ میں ہیں, ان کی بات چیت ہوئی آج صبح ہوم منسٹر امت شاہ کے ساتھ, جس میں کہ انہوں نے انسٹرکٹ کیا کہ آپ فورن میجرز لے اور وہاں پہ سائٹ پہ پہنچے. اس کے اوپر پھر امت شاہ صاحب جو ہے شری نگر میں پہنچے, انہوں نے چیئر کیا ایک ہائی سیکیورٹی ریویو ایجنسیز کے ساتھ. سب نے جو ہے اس کو اٹیک کو بہت زیادہ کنڈیم کیا, جو کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے بھی, خاص طور پہ محمودہ مفتی جو کہ پی ڈی پی کی چیف ہیں. اور امت شاہ نے کہا کہ جو بھی کوئی ریسپانسبل ہیں ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور پنش کریں گے. سیکیورٹی آپریشنز جو ہیں انٹینسیفائی کر دیے گئے ہیں ویلی کے اندر, اور اتارٹیز جو ہے انہوں نے ایریا کو کارڈن آف کیا ہے. اور مودی جی جو کہ سعودی میں تھے, جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا, ہی ہیز کٹ ہز ٹرپ شارٹ, اور آج وہ رات کو پہنچ رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا, مجھے لگتا ہے کہ ابھی پہنچ گئے ہوئیں گے وہ انڈیا میں, تو وہ پہنچے ہیں. کریتی سینون جو ہیں, ویسے 34 کی ہو گئی ہیں, لگتی نہیں ہے 34 کی, لگتا ہے جیسے 16-17 کی ہے. بہرحال جی, شی از گوئنگ ٹو جوائن رنویر سنگھ ان فرحان اخترز ڈان 3, اور یہ جو ہے اب سائن کر لیں گی کچھ ہی دنوں میں ان کے ساتھ یہ ڈیل. اکارڈنگ ٹو سورسز, فرحان جو ہے اور اس کی کریٹو ٹیم جو ہے ایکسل انٹرٹینمنٹ پہ, وہ چاہتے تھے کہ کسی ایکسپیرینس ایکٹریس کو لائیں اسکرین پہ جس کا کہ اسکرین پریزنس بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ جو کریتی ہے وہ بالکل बहुत ज्यादा हैंड एंड ग्लव जैसे होता है ना, वैसे वो स्क्रीन के ऊपर ऐसे फिट हो जाती है। और ये जो 2023 में उन्होंने कहा था कि रणवीर जो है अब ये आइकॉनिक रोल प्ले करेगा बिग बी और शाहरुख खान के बाद, तो फरहान भी 10 साल से उन्होंने भी कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं किया था, तो नाउ ही इज ऑल्सो रिटर्निंग एज डायरेक्टर। इससे पहले कियारा एडवानी को साइन किया गया था फॉर फीमेल लीड, लेकर उनका प्रेगनेंसी आ गया था तो फिर उन्होंने बोला कि मैं नहीं कर रही हूं। तो अभी जो है इनका कास्ट पूरा हो गया है क्योंकि कृति को ले ली और अब काम इस पे शुरू होगा। संजय लीला भंसाली की जो हाईली एंटिसिपेटेड एपिक है लव एंड वॉर, जिसमें के रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल है, वो शायद मार्च 2026 में रिलीज नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये चाहते थे, कुछ लोगों का कहना है कि शायद ये चाहते थे कि यश की जो मूवी आ रही है टॉक्सिक, जो बहुत बड़ा सुपरस्टार है साउथ का, उसके साथ ये क्लैश ना करे। लेकिन और लेकिन ये दूसरी दफा जो फिल्म है उसके अंदर डिले रहा, लेकिन सोर्सेज के मुताबिक ये इसको पहले तो जो क्रिसमस 2025 से मार्च 2026 में पोस्टपोन किया गया था कि क्योंकि कुछ प्रोडक्शन के चक्कर थे, लेकिन आज फिर सोर्सेज ने कहा है कि यश की मूवी के साथ क्लैश का नहीं, ये बहुत बड़े स्केल के ऊपर इसका जो है भंसाली साहब शूट करना चाहते हैं, और शूट नवंबर में ही शुरू हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता है। और इसकी जो सीक्वेंस है बहुत ही एपिक स्केल के ऊपर है, जो कि रणबीर और विकी के बीच में रहेगी, तो इसका तो सारा टीम का काम ही जनवरी 2026 में खत्म होएगा, तो पोस्ट प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए पॉसिबल नहीं है कि अगले दो महीनों में इसको फिनिश करके और मार्च में फिल्म को रिलीज किया जाए, तो इसलिए हमने इसको पुश किया है। ऐश्वर्या राय बच्चन जो है उन्होंने कुछ अर्सा पहले एक इंटरव्यू दिया था जिसमें कि उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारे रोल्स जो है वो इसलिए सिर्फ रिजेक्ट कर दिए थे क्योंकि मैं किसिंग और इंटीमेट सीन्स करने के लिए इतना कंफर्टेबल नहीं थी। उन्होंने कहा जी मैंने कभी भी ये स्क्रीन पे नहीं किया था, तो ये आइडिया मेरे साथ इट वॉजेंट सिटिंग वेल विद मी और मैं उस तरफ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जब मुझे धूम 2 ऑफर हुई ऋतिक रोशन के साथ और मुझे किसिंग सीन करना पड़ा, तो यू विल बी सरप्राइज कि लोगों ने मुझे, फैंस ने मुझे लीगल नोटिसेस भेजने शुरू कर दिए। लोगों ने मुझे कहा कि तुम इतना आइकॉनिक पर्सनालिटी है और इंडियन लड़कियों के लिए एक एग्जांपल है, और लड़कियां तुमको देख के अपना एग्जाम्पलरी लाइफ जो है वो गुजारना चाहती है, तो तुम ऐसा कैसे कर सकती है। तो उन्होंने कहा जी कि मैं बड़ा हैरान हुई कि फैंस ने ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो एक एक्टर हूं एंड आई एम जस्ट डूइंग माई जॉब। वेरी गुड। पाकिस्तान जो है, क्योंकि पाकिस्तान वुमेन टीम जो कि अनबीटन रही है थ्रू आउट आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 क्वालिफायर्स में, इसलिए इसके जो टॉप परफॉर्मर्स हैं वो ओडीआई रैंकिंग्स में जो आईसीसी की है उसमें ऊपर चले गए हैं। कैप्टन फातिमा सना जो है शी हैज जम्प 5 प्लेसेस टू 27 इन बोलिंग रैंक। ऑलराउंडर रैंकिंग्स में भी इनकी पोजीशन 10 स्पॉट्स ऊपर गई है इन अ जॉइंट 15 पोजीशन। स्पिनर सादिया इकबाल ऑल्सो इम्प्रूव्ड 5 स्पॉट्स टू 17th इन ओडीआई बोलिंग। नशरा संधू जो है अभी 13 पोजीशन पे आ गई है। बैटर सिद्रा अमीन जम्प किए हैं 5 प्लेसेज एट 18th इन ओडीआई बैटिंग रैंकर। और बैटर मुनीबा अली जो है वो भी अब 30th पोजीशन पे है। गुड गोइंग गर्ल्स। और जनाब आज का पीएसएल 10 का मुकाबला था मुल्तान सुल्तान और लाहौर के बीच में जो खेला गया एट मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम। सुल्तान्स ने आज का मैच जीता 33 रन से। हालांकि रिजवान ने टॉस विन किया था और डिसाइड किया था कि हम बैटिंग पहले करेंगे, और जो है फिर उसका उनको फायदा भी हुआ। उन्होंने बनाए 228 for 5। कलंदर जो है उसके जवाब में जो है वो 195 for 9 पे ही आउट हो गए। हालांकि सिकंदर रजा ने बनाया अनबीटन 50 of 27 डिलीवरीज। उबेद ने लिए 3 wickets for 37। ब्रेसवेल उसामा ने 2 लिए। यासिर खान ने बनाए थे 87 for 44 डिलीवरीज। इफ्तखार अहमद ने 40 of 18 बॉल्स। लेकिन डिस्पाइट दिस विन ये जो सुल्तान्स है अभी भी टेबल जो पॉइंट्स टेबल है उसके बॉटम पे है विद जस्ट अबाउट 2 पॉइंट्स, क्योंकि सिर्फ आज का पहला मैच ये जीते हैं इन 4 मैचेस। और कलंदर जो है अब 3rd पोजीशन पे है। उफ माय गॉड कितना लंबा ये, और रिजवान कैसा बेबी लग रहा है। पाकिस्तान मेड अ ग्रेट शोइंग एट द 129th बॉस्टन मैराथन। अमीन मुकाती और सारा लोदी जो हैं दे इमर्ज्ड एज द फास्टेस्ट मेल एंड फीमेल फिनिशर्स। मुकाती 23 इयर्स का है, कराची का रहने वाला है, एंड ही क्लॉक्ड इम्प्रेसिव 2 hours 48 minutes 47 seconds। दूसरे कराची आइट्स जो हैं अब्दुल रहमान, उन्होंने भी फिनिश किया 2 hours 51 minutes and 13 seconds। जो औरतों का कंटिंजेंट था उसको लीड कर रही थी सारा, जिसकी एज 39 इयर्स है, शी फिनिश्ड इन 3 hours 24 minutes and 46 seconds। और ये इनका करियर का 9th मैराथन है और 5th वर्ल्ड मैराथन मेजर है। ये यूएई में रहती है और इसकी 3 बेटियां हैं। वो कहती हैं, जी मैं अपनी बेटियों के लिए और लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहती हूं और मैं बताना चाहती हूं कि औरत कुछ भी कर सकती है अगर वो सोच ले। आमिर संभल के रहना, औरत जो सोच ले फिर वही करती है। फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन टेस्ट ओपनर माइकल स्लेटर 55 ईयर्स, उनका सस्पेंड किया है आज 4 ईयर प्रिजन सेंटेंस जब इन्होंने प्लीड किया गिल्टी टू डोमेस्टिक वायलेंस चार्जेस एंड ही वॉक्ड फ्री टुडे आफ्टर गेटिंग अर्ली रिलीज, क्योंकि अभी तक इन्होंने 1 साल कस्टडी के अंदर जो है वो सर्व कर लिया है, वेटिंग फॉर द केस टू बी हर्ड, और ये जेल में वापस जा सकते हैं टू कंप्लीट हिज सेंटेंस इन फुल अगर इन्होंने कोई भी और सीरियस क्राइम किया इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। एंड जनाब एब्सोल्यूटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट हॉकी, हमारे अपने ही कनाडा से। इन फ्रंट ऑफ पैक्ड हाउस कोर्ट हाउस 5 फॉर्मर मेंबर्स ऑफ कैनेडियन वर्ल्ड हॉकी जूनियर टीम जो है इन्होंने प्लीड किया नॉट गिल्टी एट लंदन ऑन्टेरियो कोर्ट रूम। डिलन ड्यूबे, क्वार्टर हार्ट, माइकल मैकलियॉर्ड, कैल फुटे, एलेक्स फॉरमेंटन जो है इन्होंने कहा कि हम गिल्टी नहीं है ऑफ सेक्स चार्जेस जो कि हमारे पे लगाए गए हैं। जस्टिस मरिया कैरोकिया ने आज ये इनके कहा कि हमको एक ज्यूरर का रोल जो है वो भी देना पड़ेगा, यानी एक ज्यूरी सेटअप करनी पड़ेगी, और चूंकि इसका लेंथ जो है वो ज्यादा रहेगा और पब्लिक इंटरेस्ट इस ट्रायल में है, इसलिए 14 लोग जो हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा टू सर्व फ्रॉम अ पूल ऑफ ओवर 200 पीपल, जिसमें कि 2 अल्टरनेट्स जो हैं वो भी हम रखेंगे, यानी कि अगर 2 लोग उसमें से कभी बीमार हो जाते हैं तो उनको फिर चेंज किया जाएगा जब हम ट्रायल शुरू करेंगे। पोटेंशियल ज्यूरर्स जो हैं उनके ऑक्यूपेशंस हैं जैसे कि रजिस्टर्ड नर्स, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर, डेयरी फार्मर, रेस्टोरेंट मैनेजर, स्टूडेंट एंड फ्लोरिस्ट। 47 नेम्स जो हैं वो आए हैं एज पार्ट ऑफ विटनेस लिस्ट जो कि ट्रायल के बीच जो है वो के दरमियान यानी कि वो अपीयर होते रहे।